नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 30 अध्याय से, जिसका विषय है भावी महाक्लेश। अध्याय 30 से 39 तक में यिर्मयाह की पुस्तक का ये चौथा भाग हम देखते हैं। इसमें इसराइल के 12 गोत्रों से संबंधित भविष्यवाणी है और यहूदा की आने वाली बंधुआई के संबंध की भी भविष्यवाणियां हैं। इस भाग की भविष्यवाणियां समय के व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन अध्यायों में जो संदेश है वह यहूदा के अंधकार के गहरे पलों में यिर्मयाह द्वारा लाया गया था, परंतु अंधकार इतना गहरा नहीं था कि उसका संदेश अद्भुत प्रोत्साहन का न हो। परिस्थिति यह है कि नबूकदनेस्सर की सेना यरूशलेम की शहरपनाह के बाहर उपस्थित है और वे अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। इस बार नबूकदनेस्सर नगर को नष्ट करेगा और मंदिर को ध्वंस कर देगा। यिर्मयाह को बंदी बनाकर आंगन में बंद कर दिया गया है। वह वास्तव में बंदी गृह में था। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से संघर्ष करते हुए उसे 7 वर्ष हो गए थे। यद्यपि घटनाएं धीरे धीरे घट रही थी, यिर्मयाह की भविष्यवाणी दिन प्रतिदिन सत्य सिद्ध हो रही थी। हनन्याह ने कहा था कि नबूकदनेस्सर का जुआ 2 वर्षों में तोड़ दिया जाएगा। 7 वर्ष हो गए हैं और नबूकदनेस्सर शहरपनाह के बाहर है। उसका जुआ तो तोड़ा भी नहीं जाएगा, परंतु यरूशलेम को वह तोड़ने जा रहा है। प्रभु के भवन के पात्र लौटाए नहीं जाएंगे। कोन्याह लौट कर नहीं आएगा। स्थिति बुरी से और भी अधिक बुरी होती जा रही है। वे आसमान से गिरे खजूर में लटके हैं। यहूदा वासियों के जीवन का स्तर गिर चुका है। यरूशलेम पर बेबीलोन के विनाश का साया मंडरा रहा था और इधर देश की पापी प्रवृत्ति के कारण यिर्मयाह बंदी बनाया हुआ है। वे परमेश्वर का वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं। आज भी ऐसे कितने लोग हैं, परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता है, उनके जीवन में शांति और आनंद देना चाहता है, परंतु वे परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हैं। क्या इससे अधिक अंधकार हो सकता है? क्या मन को निराशा से भरने वाली और कोई परिस्थिति हो सकती है? अब वह अंधकार को पार करके प्रकाश में आ गया है। रात तो आती है, परंतु सुबह भी आती है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 1 और 2 पद। लिखा है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। ध्यान दीजिए, वह अपनी भविष्यवाणी लिख रहा है। वह बंदी गृह में है। वह रविवार की सुबह मंच पर नहीं होगा। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 3 से 5 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इसराइली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इसराइलियों और यहूदियों के विषय में कहे थे वे ये हैं। यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। मेरा विश्वास करें, यहूदा वासियों को यिर्मयाह बता चुका था कि शांति नहीं होगी, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि शांति शांति है, जबकि शांति थी ही नहीं। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जलने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यर्मिया प्रभु के महान दिन का और आगमन को देखता है, जिस दिन की चर्चा यशाया और अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने की थी। उन्होंने कहा था कि वह दिन ज्योति का नहीं अंधकार का दिन होगा, महाक्लेश की रात होगी, तदुपरांत वे प्रकाश को देख पाएंगे। परमेश्वर वास्तव में कह रहा है, तुमने अभी कुछ नहीं देखा है, महाक्लेश तुम्हारी आज की पीड़ा से कहीं और अधिक भयानक होगा। मेरे प्रियो, हम देखेंगे आने वाला राज्य के बारे में। यर्मिया की पुस्तक 30 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। क्लेश के उस भयानक समय के बाद इसराइल स्वदेश लौटेगा, दाऊद मृतकों में से जी उठेगा और जब वे राज्य के युग में प्रवेश करेंगे तब वह उन पर राज करेगा। यर्मिया की पुस्तक 30 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। यह परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा है और ये बातें कब होंगी? यर्मिया 30 अध्याय के 24 पद में हम पढ़ते हैं, जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। लिखा है अंत के दिनों में, यह भविष्य में पूरी होने वाली भविष्यवाणी है। यह राज्य के युग के संदर्भ में है जो निसंदेह भविष्य की घटना है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 30 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 31 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मैं करूंगा। अध्याय 30 से 33 तक एक अत्यधिक आशावादी और प्रोत्साहन का गीत है। अब यर्मिया दंड की चर्चा कर रहा था, परंतु अब उसका संदेश पूर्ण रूपेण विपरीत है। E.W. हेंगस्टनबर्ग इन अध्यायों को इसराइल का विजय गान के नाम को देता है। ये अध्याय यहूदा राज्य के सबसे अधिक गहरे अंधकार के समय लिखे गए थे। जी हाँ, यहूदा का अंतिम राजा सिद्दिकिया उत्तरी राज्य के होशियाह राजा के तुल्य है, परंतु उत्तरी राज्य बहुत पहले ही बंधुआई में चला गया था। इस समय नबूकदनेस्सर की सेना यरूशलेम के शहरपनाह के बाहर है और यरूशलेम को नष्ट करने और मंदिर को ध्वंस करने के लिए तैयार है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यद्वाणी निराधार सिद्ध हो गई है। 7 वर्ष पूर्व हनन्याह ने कहा था कि बेबीलोन 2 वर्ष में नष्ट हो जाएगा, परंतु नबूकदनेस्सर अभी जीवित है और यहूदा के विनाश के लिए भी जीवित खड़ा है। यर्मिया का संदेश प्रोत्साहन का संदेश है। अध्याय 30 में उसने प्रभु के दिन के आगमन की चर्चा की थी जो महाक्लेश से आरंभ होने वाला है। पद 7 में उसने उस दिन को याकूब के कष्ट का दिन भी कहा है, परंतु महाक्लेश के बाद इसराइल के पुनःस्थापन और प्रजा के लौट आने की भविष्यवाणी है। मैं अध्याय 31 को मैं करूंगा अध्याय कहता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर 15 बार ऐसा कहता है। यदि परमेश्वर कहे मैं करूंगा और वह भी 15 बार, तो वह हमें स्पष्ट कहता है कि वह क्या करेगा। मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय उसका 1 पद। उन दिनों में मैं सारे इसराइली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी, यहोवा की यही वाणी है। यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है, वह समय अभी नहीं आया है। उनकी आज की परिस्थितियां इस भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे हैं। मुझे बताया गया है कि उस देश में मसीही जनों का बहुत सताव है। वे धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, परंतु ऐसा वहां पर नहीं है। यहूदी अपने देश तो लौट आए हैं, परंतु वे परमेश्वर की ओर अभी भी नहीं फिरे हैं। यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ, मैं इसराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यहाँ इसराइल के स्वदेश लौट आने के कारण परमेश्वर व्यक्त कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इसराइल जाति को उस देश में ले आना चाहता है, परंतु अपने समय में, अपनी योजना के अनुसार और अपने उद्देश्य के निमित्त। इसका कारण यहाँ स्पष्ट है, मैं तुझ से सदा प्रेम करता आया हूँ। यह पद परमेश्वर के मनपसंद पदों में ऊंचे स्थान पर है। कुछ लोग पूछते हैं, परमेश्वर इन लोगों से प्रेम कैसे कर सकता है? यह एक अच्छा प्रश्न है, हम इसे और बढ़ाकर पूछें, परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम कर सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर इसराइल से ही नहीं संपूर्ण संसार से प्रेम रखता है, वह आपसे और मुझसे भी प्रेम रखता है। यहूदियों पर उंगली उठाना और उनकी आलोचना करना आसान है, परंतु परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुमसे, तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं, इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, यह तो परमेश्वर ने कहा है। अतः उन पर उंगली उठाने की अपेक्षा हमें अपने पर उंगली उठाना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में हम किसी भी अविश्वासी की नाई एक महान पापी हैं। आपके और मेरे उद्धार के लिए प्रभु यीशु को मरना पड़ा। अतः एक ही समुदाय पर उंगली उठाकर न कहें, परमेश्वर उनसे कैसे प्रेम कर सकता है? मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम कर सकता है? हमें तो आश्चर्य होना चाहिए कि हमसे, अर्थात हम में से किसी से प्रेम वह कैसे कर सकता है। कहता है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। सदा, मैं यहां सदा से परमेश्वर का अभिप्राय समझ नहीं पाया हूं। एक बार मैंने एक छोटे लड़के से पूछा, सदा और कभी नहीं कितना लंबा समय होना चाहिए? उसने कहा, मेरे विचार में यह बहुत लंबा समय है। प्रेम, यह प्रेम क्या है? मेरी समझ में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो इसलिए नहीं कि हम कुछ हैं, परंतु इसलिए कि वह है। वह अपने आप में इसका उत्तर पाता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, प्रेम इस बात में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इस बात में है कि उसने हमसे प्रेम किया। यह प्रेम है। यूहन्ना की इस बात पर क्रेमर ने टिप्पणी की, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम उसके प्रेम से उत्पन्न होता है और इसके अतिरिक्त और इसके साथ अन्य कोई और कारण नहीं है। यह परमेश्वर में है और परमेश्वर के साथ ही रहता है। अतः प्रभु यीशु जो परमेश्वर में है उसका केंद्र है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम रखता है मेरे मित्रों, और मैं आपको बता नहीं सकता कि क्यों। मैं परमेश्वर के प्रेम के वश में हूं। यदि वह अपना विचार बदल ले तो मैं तो क्या, आप भी सदा के लिए नाश हो जाएंगे। परंतु वह कहता है कि उसका प्रेम सदा का है, यह अनंत समय है। मेरे अनेक मित्रों का कहना है कि परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया है। यदि ऐसा है तो आपको और मुझे भी उसने त्याग दिया है। वह कहता है, मैं तुझसे सदा से प्रेम रखता आया हूं, आप और मैं क्या सोचते हैं उससे इस पर अंतर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने इसराइल को त्याग नहीं दिया है। यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा और उनके बीच अंधे लंगड़े गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी, एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी। इसराइल को स्वदेश लौटा लाना एक बहुत बड़ा काम है। आप सोचेंगे कि परमेश्वर लंगड़े अंधे आदि को छोड़कर सब हृष्ट पुष्ट इसराइलियों को स्वदेश लौटा लाएगा। परमेश्वर कहता है कि वह हर एक को एक विशाल जन समूह को स्वदेश लौटा लाएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यर्मिया 31 अध्याय के 9 पद में, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का पिता हूं और एप्रेम मेरा जेठा है। मैं इसराइल का पिता हूं और एप्रेम मेरा जेठा है। परमेश्वर ने किसी एक का नाम लेकर नहीं कहा कि वह उसका पिता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में वह मूसा से कहता है, अर्थात मूसा को अपना दास कहता है। भजन संहिता 89 उसके 3 में वह दाऊद को अपना दास कहता है। परंतु जब वह इसराइल के बारे में कहता है तो वह कहता है, मैं इसराइल का पिता हूं। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 22 पद में हम इसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है यर्मिया 31 अध्याय उसके 10 पद में, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इसराइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे रेडियो प्रसारण सेवा दी है जो प्रतिदिन विश्व के कोने कोने में पहुंचता है। मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर जो कहता है वही मैं भी सोचता हूं, कि पृथ्वी के सब द्वीप परमेश्वर का वचन सुने। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के वचन को सुने, कि परमेश्वर ने इसराइल को दंड दिया और उन्हें विसर्जित कर दिया है, परंतु उनके लिए उसका प्रेम अनंत है और वह उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा। उसने इसराइल से प्रेम रखा और इसी कारण उसे दंड दिया। यह एक कड़वा परंतु मधुर संदेश है। मेरे मित्रों, यर्मिया की संपूर्ण पुस्तक में आनंद के साथ दुख का भी संदेश है। परमेश्वर ने इसराइल को दंड तो दिया परंतु यह भी कहा कि उन्हें फिर से वह वापस ले आएगा, अर्थात उन्हें घर से बेघर करने वाले ही घर लौटाकर लाएंगे। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। मित्रों, परमेश्वर की बात यहीं समाप्त नहीं होती है। वह आगे कहता है यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरा मन कहता है हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल के लिए ऐसा ही करेगा, यही उसकी इच्छा है। परंतु इसराइल की दशा त्रासदीपूर्ण थी। उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया और भटक गए। यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय के 22 पद में लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह पद प्रभु यीशु के कुमारी से जन्म लेने के बारे में है। मैं इसका खंडन नहीं करता। पद 31 से आरंभ करके एक नई वाचा है जो परमेश्वर इसराइल के साथ बांधना चाहता है, 12 गोत्रों के साथ। आप सोचते हैं कि 10 गोत्र खो गए हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। वह 12 गोत्रों के साथ वाचा बांधेगा। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह के पुस्तक 31 अध्याय उसके 31 से 33 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ही की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यह नई वाचा सीनै पर्वत पर दी गई मूसा की वाचा से भिन्न है। इसमें एक महान अंतर है, यह पत्थर की पट्टियों पर नहीं उनके मन में लिखी जाएगी। यिर्मयाह के पुस्तक 31 अध्याय के 34 पद में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। देखिए परमेश्वर इसराइल के साथ इस वाचा को कैसे बांध रहा है। यिर्मयाह के पुस्तक 31 अध्याय उसके 35 और 36 पद में हम पढ़ते हैं, जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इसराइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यह वाचा न तो बदली जाएगी और न ही निरस्त की जाएगी। यह वैसा ही है जैसा चांद का मार्ग न तो बदलता है और न ही बदला जा सकता है, और न ही चांद को आकाश में से निकाला जा सकता है। अतः इसराइल के साथ बंधी परमेश्वर की वाचा को भी न तो हटाया जा सकता है और न ही उसे बदला जा सकता है। मनुष्य चांद से 100 किलो पत्थर लाया था। यदि 10 लाख वर्ष तक हम ऐसा ही करते रहें, तो मेरा विचार है कि पूरा चांद पृथ्वी पर आ जाएगा, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि उसकी वाचा अनंत काल तक रहेगी। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 32 में, जिसका विषय है बंदी यिर्मयाह जमीन खरीदता है। इस समय यिर्मयाह बंदी गृह में है और नबूकदनेस्सर यरूशलेम को घेरे हुए है, परंतु फिर भी यिर्मयाह अनातोत में जमीन खरीदता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। देखिए यिर्मयाह समय को कैसा उचित रूप में व्यक्त करता है। सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में नबूकदनेस्सर ने उसी वर्ष यरूशलेम की शहरपनाह गिराकर यरूशलेम को उजाड़ा था। वह दिन निश्चय ही घोर अंधकार का दिन था। तब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 32 अध्याय उसके 7 पद में, देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि उसे अपने चचेरे भाई हंडमेल का खेत खरीदने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यिर्मयाह उसके खेत को मोल लेता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में वाचा बांधता है, उससे प्रेम करता है और अपनी सारी बातों को पूरा करता है। यद्यपि कि हम मनुष्य कई बार परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, उसके विरुद्ध में कार्य करते हैं, इसके बावजूद वह हमें अवसर देता है, हम पर अनुग्रह करता है, ताकि हम अपने पापों से मन फिराएं और उस परमेश्वर के पास आ जाएं। क्या आज आपका जीवन इन इसराइलियों के समान है या आप भिन्न व्यक्ति हैं? मैं नहीं जानता, परंतु आज के इस वचन के प्रकाशन में आप अपने आप को जांचने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे अवश्य ही बातचीत किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, अपना लहू बहा दिया, इसके वज दिले अजीज यीशु को तूने क्या दिया, यीशु को तूने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, अपना लहू बहा दिया। के वास्ते तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते सूली पे चढ़ के खुद ब खुद अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपने